और ज्यादा देर चड़स से पानी का सिंचाई से प्रयोग करते थे बैलों के द्वारा, एक चमड़े का जिसमें दो तीन मण पानी आ जाए इकट्ठा ही चार मण, और ऐसा चमड़े का चरस बनवा के और सिंचाई के लिए प्रयोग किया करते थे। तो थोड़ी ही जमीन में वो फसल बोई जाती थी। परमात्मा बारिश कर देता था तो ज्वार बाजरे वैसे हो जाते थे, ऐसी वहां पर थी, बाकी फसल जमीन खाली रहती। एक दिन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में फागुन का महीना था, द्वादशी का दिन था, सुबह सुबह 12-10-11 बजे, क्योंकि फागुन उतरते फागुन में तकरीबन गर्म से दिन आ जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन में थोड़ी बहुत ऐसे धूप सी सुहान लग जाती है, थोड़ी तेज भी लग जाती है। तो वो क्या किया कि सारे पाली से, उस दिन गर्म दिन था, उस एक जाटी के पेड़ के नीचे पाली बैठ रहे थे, गऊ चर रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक भक्त राह चालता, एक संत आने लग रहा है। वो कौन था? वो भगवान कबीर साहब थे। कबीर साहब टोपी सिर पे और छोटी छोटी दाढ़ी और धोती और कुर्ते में, ये कबीर साहब काशी के अंदर 120 वर्ष रह करके विक्रमी संवत 1575 में काशी के अंदर हजारों व्यक्तियों के सामने अपने शरीर को फूलों में परिवर्तित करके और अपने सतलोक धाम को चले गए थे। 1575 सन 1518 219 वर्ष के बाद वही शक्ति, वही परमात्मा कबीर साहब दोबारा छुड़ानी में आते हैं, अपनी सब शक्ति से प्रकट होकर आके बैठ जाते हैं उन पाड़ियों के पास। पाड़ी पूछने लगे, भाई कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और फिर कहने लगे कि आ जाओ, भोजन पाओ भाई, राह चालते। कबीर साहब कहने लगे, भाई भोजन मैं नहीं खाता। तो दूध पी ले, पहले अतिथि सेवा बहुत होती थी। राह चलते ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे, भाई खाने का समय, भोजन खा के जाइए। ऐसा ही बच्चों में संस्कार पड़ा हुआ था। तो वो कहने लगे, भाई दूध पी लेता है, दन्यू ताम जान को अंजा। तो वो कहने लगे, कबीर साहब बोले, भाई एक बात करो, दूध तो मुझे पिला नहीं सकते। अकिया कैसे कही आपने, हाँ मेरा बाल्टी ठोक दें दूध की, 150 गाय हैं, कम से कम 50 दूध दे हैं। कबीर साहब ने बोले, इन गायों का दूध मैं ना पीऊं भाई, और किसका पीवे? उस बछिया का दूध पीऊं जो आज तक नए दूध भी ना हुई, रेख में भी ना ब्याई हो, कंवारी बछिया हो। पोपाड़ी ने बोले, फिर तो मजाक करते हो आप, दूध पीण की आपने नीत कोई ना, अग्नावे कति नीत से, अगर ऐसी बछिया का दूध पिला सकते हो तो दूध पी लो। गरीबदास जी खड़े हुए, अरे एक बछिया का कान पकड़ जाए, गले में जेवड़ी सी वसो उसकी पकड़ के और कबीर साहब के सामने खड़ी कर दी। कहने लगे, महाराज जी देखियो, या छोटी सी बछिया दूध क्यों कैसे देगी, ना इसका बच्चा है ना या कदे ब्याई है। कबीर साहब ने बोले, ये तुम्हारा लस्सी का बर्तन है ना मटका छोटा सा, इसको साफ कर लियाओ। कबीर साहब, गरीबदास जी बोले, जी साफ करा करा दे रहा है, लस्सी हमने पी ली, रोटी ली, खा धोकर दर रखा कि लियाओरे ने ठाक है, और दरिस गऊ के नीचे, बछिया के नीचे रख दिया। और कबीर साहब ने ऐसे उस गऊ के ऊपर हाथ धर दिया बछिया पे, कहते इतने लंबे लंबे थन हो गए उस गऊ बछिया के, और दूध अपने आप झरन ला गया उसमें थना में। बोल सतगुरुदेव की जय। जब वो बर्तन मिट्टी का छोटा सा मटका, जिसने बरोला कह दे, जब वो भर लिया, अपने आप दूध बंद हो गया। पर वो थन जो के नो इतने लंबे रहे उसके, ये दिखाण कातर कि गांव वाले नो ना सोचे कि उन्हें जादू जंतर कर दिया होगा। गरीबदास जी ने वो उठाया मटका, वो बर्तन छोटा सा पात्र, और साहेब को दे दिया, अकलो महाराज जी पी लो। कबीर साहब ने आधा पिया, आधा कहने लगा, ले अभी पाड़ियो तुम पी लो। वो पाड़ी बोले, इस पाप के दूध ना हम ना पीवे, आया है तेरा क्या काट दिया दूध। गरीबदास जी बोले, मन्ने दे जी, आपका یہ امرت ہم نے کد کد ملا ہے. منہ لگا کے وہ بچہ 10 سال کا بچہ دودھ نے پی گیا. اور پاڑی وہ سیانے پاڑی تھے, اس میں بڈے بھی تھے, کوئی 20 سال کا, کوئی 50 سال کا, بڈھا بھی 40 سال کا گیل تھا. وہ اٹھ کر اٹھے تو منہ بنا کر 2 کلوں پہ جا کر ورکس کے نیچے بیٹھے, 3 کلوں پہ پرلی سائڈ میں, اور غریب داس تھی اور کبیر صاحب وہاں رہ جاتے ہیں. کبیر صاحب غریب داس کو سمجھان لا گیا, بیٹا یہ منس جنم بار بار نہیں ملا کرتا, اس میں بھگوان بجا کریں, اور دیکھ بھگوان نہیں بجیں گے تو یہ گو, یہ بیل, یہ گدڑ, یہ کتے, یہ سور, یہ ورکس, یہ گندی نالی کے کیڑے, یہ دنیا پن بھوگنی پڑیں گی. ہمارا جی پھر یہ کیسے مٹے ہمارا دکھ کہ بھگوان کا بھجن کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے بھگوان کا بھجن تو ہم خوب کریں. کیسے کرتے ہو کہ صبح اٹھانا ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں رام رام, اور کوئی ملتا راستے میں اس کو بھی کہہ دے رام رام بھائی رام رام. کہنے لگے نو نہیں بھائی, رام رام کوئی جپنے کا اکثر نہیں ہے. اکور جی اک نہیں, رام رام جیسے کوئی بیمار نے نو کہہ دے بھائی دوائی کھاؤ, دوائی لے لے بھائی, دوائی لے دوائی لے. اب دوائی لینے کے لیے جب ہم جائیں گے کیمسٹ کے بعد پاس, وہ پوچھے گا کون سی دوائی بھائی, کی بیماری ہے, اس کا کی نام اور نام ہوتا ہے وہ دوائی کا. اگدینو ککر کیسے ہی ہے بھائی, ہم رام رام کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی رام ہے جو کچھ ہے, باقی یہ سب نقل سودا ہے. ہم رام رام کا کیوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو, رام میں رام بھائی, ایک کو کہتے ہیں نا رام رام, تو آگے والا کیا اتر دیتا ہے, رام میں رام بھائی, رام ہی رام بھائی, کہ جو کچھ ہے رام ہی ہے, باقی تو نقلی سودا ہے. اس لیے اس پرماتما کو یاد کرنا چاہیے. کہنے لگے جی نیو تو ہم بھگوان کرشن کی, رام چندر جی کی کوئی نومی راٹھم مناتے ہیں, اکنا اس کے منانے سے بھی کام نہ چلے. یہ تو ایک ویسے آپ کو یاد کہ جو جیسے کرشن جنماشٹمی رام نومی, یہ تو اس پرماتما کی یاد کا پرتیق ہے, آتم کلیان نہیں اس طرح. تو کہتا ہے جی ہم اور کے جپ مندر میں چلے جاتے ہیں بھگوان شیو جی کے, میں فلانے گاؤں میں سدو لیڈا میں وہ ماتھا ٹیک کا اس میں پانی چڑھا دیں, بھلے پرس پتھر کی مورتی پر پانی چڑھانے تک دے آتم کلیان ہوا کرے. آپ مورتی بنا لی, آپ بھگوان بنا مان لیا, پرماتما اپنے اندر سے بیٹا, اور اس پرکار نام سے پراپتی ہوگی. اب اسے بھونڈے شریر میں اس میں تمہارا جی ہارڈ ماس لو تھوک بیسٹا ڈھیڈ, اس میں بھگوان کی تو تھا. گریب داس جی پرسن کرتے ہیں, بندی چھوڑ کہتے ہیں کبیر صاحب جیسے آڈ چام کی دیہ میں امرت دودھ سروانت, اور گریب داس گٹ پنڈ میں بھائی ایسے ہے بھگوان. جیسے گو میں وہ شریر ہارڈ اور ماس کا, اور دیکھ اس میں دودھ بھی اس کا مائیں سے بھائی, کتنا امرت دودھ نکلتا ہے. اسی پرکار جس پرکار وہ پرکریا گو میں ہوئی, پہلے وہ نئے دودھ ہوئی اور پھر اس کو بچہ ہوا اور پھر دودھ کی بالٹی ٹھوکن لائے گی, ٹھیک اسی پرکار پورے سنت کی سرن میں جائیے, اس سے نام لیجئے, اور نام اس پرکار تیرے گھٹ میں وہ پرماتما پرگٹ کر دے گا, نام بنا نہیں ہوگا. تینو بولا جی ٹھیک سا بھگوان وشنو اور شیو جی کا نو کہتے ہیں وہاں لوگ بہت بڑھیا ہیں, مہاراج جی میں وہ نام دے دو جو میں وہاں چلا جاؤں. گریب داس جی مہاراج کو کبیر صاحب نے بتایا کہ کوٹ جنم تن بھرمت ہو گئے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے, تو ککر سوکر کر خر بورے کوا ہنس بگارے. کوٹ جنم توں راجا کی نہ مٹی نہ من کی آسا, اور بھکشک ہو توں در در ہانڈا تو ملا نہ نرگن راسا. اندر کبیر ایس کی پدوی برما ورن دھرم رایا, تو وشنو ناتھ کے پور کو پہنچا اور پھر الٹائے آیا. کوٹ جنم تن مرتیا ہو گئے جیوت کیوں نہ مرے رے, اور دوادس مد محل مٹ بورے بہور نہ دے دھرے رے. دوجک بھیس سبھیتے دیکھے راج پاٹ کے رسیا, اور تین لوگ سے ترپتی نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا. ستگر ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا, اور چل ہنسا اس لوک پٹھاؤں جو آج امر استھانا. چار مکتی جا چمپی کرتی مایا ہو ری داسی, اور داس گریب ابھے پد پر سبھائی ملے رام اویناسی. کہتے ہیں یہ بشنو کے لوک میں تو کروڑوں بار جا لیا, और स्वर्ग में असंख्यों बार जा लिया, इंद्र का राजा भी तू हो लिया, यहां पर राजा हो लिया, देवराज इंद्र तू बन लिया। भैया बिरान मैटी ना मिटी, जन्म मरण नहीं मिटा तुम्हारा। आका महाराज जी या तो गीता जी में बताओ लिख रखी है, एक पंडित जी सुनावा था, एक दिन मैं बैठ गया थोड़ी देर उसके पास, उसमें भगवान कहता है कि अर्जुन जन्म मरण ना मिटा भाई, तेरे मेरे गणे जन्म हो लिए। तो महाराज कबीर साहब कहते हैं कि भाई फिर इस साधना का लाभ भी क्यों होया, जो बड़ा बिरान मैटी ना मिटती। एक बार स्वर्ग चले गए, फिर नरक भोग लिया, फिर 84 के धक्के खाओ। फिर कहने लगे महाराज जी फिर वह साधना कौन सी है जो या जन्म मरण मिटे, कि वह मैं बताऊं भाई। जैसे महाराज ने बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक ले जाऊं जो आज अमर स्थाना, जो कदे ना खत्म हो वो सच लोक है, जो कभी नाश में नहीं आता। तो गरीबदास पूछे हैं कि महाराज जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लोक ये समाप्त हो जाएंगे या स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, कति नहीं रहे भाई। खुद गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि कल्प के अंत में ये महाप्रलय होगी, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव का रहे, और सब भूत प्राणी इस प्रकृति में लीन हो जाएंगे, दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, ये दोबारा फिर यह बिरान मैटी शुरू हो जाएगी। गरीबदास शास्त्रों में लिखा है कि 14 इंद्र मर जाते हैं जब ब्रह्मा की एक रात होती है, और 14 इंद्र फिर मर जाते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक इंद्र की आयु 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी, एक चौकड़ी चार युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसी 72 चौकड़ी युग एक इंद्र राज करता स्वर्ग का, और 14 इंद्र मर गए, 1008 चतुर्युगी या ब्रह्मा की एक रात, और इतना दिन। गीता जी में इसे लिखा है 1000 चतुर्युगी, गरीबदास जी ने लिखा है 1008 युगी, 1008 चतुर्युगी का दिन और इतनी ही रात। समझने के लिए बिल्कुल सत्य है, ये हो गया एक दिन रात ब्रह्मा का, और ऐसे 30 दिन, और 30 दिन से 2016 को गुणा करो, 30,000, 60,000 और 320, इतने चतुर्युग एक महीना बन गया ब्रह्मा का, और 12 से फिर गुणा करो, 12 छीक 72, ये हिसाब लाओ 7,20,000 कितने, ये एक महीना इतनी चतुर्युगी का ब्रह्मा का हुआ। अब सोचना ये गरीबदास महाराज के बताना चाहो हमारे को, ये अंधेरा अटाक है। ये हो गया एक वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। अब 100 तो इसको फिर गुणा कर लो, इतने चतुर्युग ये ब्रह्मा की पूर्ण आयु है, और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है, जब 50 पूरे हो गए तो वो 49 भी होंगे, जब 51वां चल रहा है तो 49 भी पूरे होंगे, अर्थात ब्रह्मा नाश में आवेगा। फिर लिखा है कि जब 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, एक विष्णु की आयु की तुलना बताते हैं, जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव समाप्त होता है, शंकर जी का अंत होता है। अब गरीब कबीर साहब बताने लगे कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और कोई सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे, इतनी भी आयु जिनकी है वो भी नाश मांगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी भगवान नहीं है, ये नाश मांगे। अब ये बात सोचन जोगी है, हम इनको अविनाशी भी कहते हैं, कैसे अविनाशी हैं, जैसे हमारी आयु की तुलना में ये अविनाशी हैं, जैसे सीजनल कीड़े। अब बारिश के महीने में गजाई देखी, इतनी लंबे लंबे पतले पतले कीड़े हैं, उनका सैकड़ों टांग हो से, और वो एक हफ्ते में बच्चा का ढूल आ देती हैं, इतना ढेर बना ले उड़ा धरती भी ना देखती, और एक हफ्ते के अंदर वो सारी खत्म भी हो लेती है। अगर वो तुलना करती है कि मनुष्यों की आयु कितनी है, कि इनके 24 घंटे का एक दिन और 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की नहीं आयु, अब ये गणा करनी भूल जाती हूं कि ये कद मरते होंगे, ये तो मरे कोई नहीं तो अविनाशी है, पर हमने बेराम कितने का विनाशी है, हमारी भी टिकट कटेगी तो 100 साल के भी होकर जावे। इसी प्रकार हमारी तुलना उन देवताओं की आयु के सामने कीड़े मकोड़ों की के समान है, लेकिन मरेंगे वो भी नहीं, तो फिर गीता जी का ज्ञान गलत हो जाता है। तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने बताया कि चार मुक्ति जहां चंपी करती। गरीबदास जी ने पूछा कि महाराज जी द्रुपर लाद कहते हैं वो तो पार हो गए, अग नहीं बेटा वो भी पार ना हुए, वो स्वर्ग में है और कल्प के अंत में स्वर्ग नष्ट होगा, वो उनकी वो भक्ति जब समाप्त हो जाएगी, उनका कमाई खत्म होगी, वो गिरधरों पर लादा जी भी दोबारा फिर स्मृत मंडल में नए सिरे से भक्ति शुरू करेंगे, और फिर उनका सूत बैठे भक्ति का ना बैठे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहने लगा महाराज जी फिर ये तो बूंदा काम से, कद मारे पग कैसे सूत बैठे, अक मैं बताऊं कति आसान। चार मुक्ति, ये चौथी मुक्ति प्राप्त हंस ब्रह्म धरु और प्रहलाद, कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो परमात्मा वो राम वो अविनाशी भगवान मिले भाई, वो कौन है, वो सत्पुरुष है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतलोक में रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और उस सतलोक से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये आपको कल सुनाएंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और हम यहां क्यों दुख पाए, इसका उद्देश्य क्या था। तो गरीबदास महाराज ने बोले जी मेरा तो यह बात समझ में नहीं आती, हमने कितने सुनी नहीं है बातें जो आप बता रहे हो महाराज जी, वैसे गलत नहीं मानते हम, क्योंकि संत जब कह रहे हैं तो हम हमारे सामने इतनी बुद्धि नहीं है कि आपकी बात को हम अस्वीकार करें, परंतु यह बात समझ में मेरे तो आती नहीं, हमने सुनी नहीं कितना। तो कहने लगे महाराज जी, गरीबदास जी कहें कि इतना बढ़िया लोक सत महाराज जी मुझे दिखा सकते हो, अगर दिखा सकता हूं पर भैया सिर दड़ की बाजी है, अग जी सिर भी आपका और यो दड़ भी आपका, और मन फिर कहने लगे भाई उपदेश लेना पड़ेगा बेटा, नाम लेना पड़ता, अगर इब्बे दे दो। महाराज जी ने उपदेश दिया, कहने लगे ध्यान लगा शरीर में, अब तुझे वो सतलोक दिखाता हूं। महाराज अपनी शक्ति से कबीर साहब इस जीवात्मा को निकाल के और ऊपरले मंडलों में ले गए, वहां का शिव का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, ब्रह्मा का लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया, स्वर्ग के अंदर के हालत से प्राणियों की वहां के काम हो रहे हैं वो सारे दिखाए, गणेश का लोक दिखाया, और फिर सारे जो वहां पर नरक दिखाया वहां जीवों की के हालत से, और फिर वो निरंजन दिखाया जो 1,00,000 जीव रोज यहां पर खाता है, जिसके लिए हमारे को यहां पर नकली सांग में उड़ जाके गिर रखा है, वो निरंजन दिखाया सत उस 21वें ब्रह्मंड के आखिरी लोक में, वहां जाकर देखा उसका विकराल रूप, कबीर साहब की शक्ति के सामने वो निष्क्रिय हो गया। तो वहां से महाराज गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए, सतलोक में जाकर जो सुख देखा उन हंसों से मिले। इधर से क्या होता है कि गरीबदास महाराज का शरीर निष्क्रिय हो गया, जब समाधि लग जाती है ये शरीर मृत समान हो जाता है, ना इसमें सांस आवे, दुनिया ने सोचा कोई अनजान आदमी के खत्म हो चुका। इतनी देर में वो पाड़ी जो दूर बैठ गए थे 2-3 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं रहो गरीब खड़ा हो गरीबू, और गरीबदास महाराज ऐसे अपना सिद्ध आसन लाके अर्जुन बैठे हैं, आंखें खुली हैं और ऊपर ने ध्यान ऐसे लगा रखा, लेकिन वो आत्मा उसमें नहीं थी, वो शरीर धरा था रखा हुआ था। उन्होंने आके अलाया रहो खड़ा हो भगत जी, देखा को नहीं आसन लाके बैठ गया, जा तेरी गौ 3 घंटे घेर दी है, इबतन ने घेरनी पड़ेगी, चौकर देता है बेरा फटेगा, ऐसे हाथ लगाया तो वो गिर जाता है। वो रोने लग गए सारे, अक वो बाबा जी बेरा ने के प्या गया छोरे ताई बांध देता है, अरे यू तो मर गया भाई। भाग लेते हैं, 1-2 गऊ के पास रहा वहां रहे, और 2-3 गांव भगा दिए कि जल्दी ला गांव वाले ने बुलाकर, और गरीबदास कह दियो गरीबू मर गया। उन्होंने जाते ही गांव में बता दिया, गांव छोटा सा गांव होता था पहले, छोटे छोटे गांव थे, आज से 250 वर्ष पहले की बात है, 300 वर्ष पहले की। तो गांव में जाते ही सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इतने बड़े जमींदार के, और एक का लड़का वो मर गया तो सारे गांव में करलाट मच गया। मात पिता ने सुनते बेहोश हो गए। अब गांव वाले बोले, भाई कुछ ना बने, चलो लाश ने संभालो। तो सबको लेने के लिए बलराम जी को होश में लाए, उसकी मां को भी होश में लाए और समझाया, भाई ये तो होनहार से ना कोई रहा ना कोई रह पावे, अब तो इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। रोते पीटते वहां पर चल पड़ते हैं, वहां पर गए, लड़के का जो शव पड़ा हुआ था वहां उसकी अर्थी बनाई और फिर वहां से जनाजा लेकर चल पड़े, गांव में लाए, उधर से करौथा में संदेशा भेजा कि ऐसे ऐसे वो लड़का आपका गुजर गया है, क्योंकि भाईचारा उनका यही था, वहां तो अकेला ही परिवार था। घोड़ा पर दो तीन व्यक्ति आए, एक घंटे में आ लिए और एक घंटे में वापस लेकर दो चार व्यक्तियों को, मौजूद मौजूदों को, उनके घरवालों को चले गए। शाम का समय हो गया, पांच छह बजे से जो है अंतिम संस्कार करना चाहा, चिता का ऊपर गरीबदास जी के शव को रख दिया और अग्नि लगाने की चेष्टा ही कर रहे थे, इतने में वो सारी लकड़ी ऐसे हिलने लगी और एकदम जो महाराज जी के ऊपर बंधन बांध रखे थे रस्से, उस अर्थी पे अपने आप टूट गए और बंदी छोड़ गरीबदास जी सत साहिब कहते हुए खड़े हो जाते हैं। बोल सतगुरु देव की जय। और उठ के वो क्या बोलते हैं, ना तो किधर भाई ने पिछाणे, ना पिताजी ने और ना ही माता को, ये बाणी बोलने लग गए। गांव वाला ने सोचा, भाई छोरे कहे वो दूध दाद पिला था ना उस बिना ब्याई हुई बच्चिया का, और वो बाबा जी को मंत्र पढ़ कर पिला गया, इसको ये बावड़ा हो गया। चलो भाई बावड़ा तो हो गया, परमात्मा पिता का सहारा तो बनाए रहेगा, इसका सारा ये दिन काट लेंगे अपने। महाराज जी बोल रहे हैं वो परमात्मा के बारे में जानकारी, और वो के जाने अनजान आत्मा उस परमात्मा ने, और वो कहते हैं ये बावड़िया बावड़िया कहने लगे। जो सतगुरु महाराज ऊपर देख का आए, वो यथार्थ स्थान हमारा जहां से हम सारी सृष्टि आई थी, जहां से ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं से आए थे और वहीं से ज्योत निरंजन आया था और ये 21 ब्रह्मंड वहीं से आए थे, उस सतलोक ने देख के महाराज जी पागल से हो गए। हमने सपने भी ना थे भगवान कौन है और हम कहां तक की साधना करके किस प्रकार तंग पाते थे। इस प्रकार कई वर्षों तक, दो तीन वर्ष तक ऐसे ही पागलों की तरिया यह वाणी बोलते रहे और ऐसे उनकी आंखें चढ़ी रहे जैसे फिलोसफर होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दादूपंथी एक महात्मा गोपाल दास सेठ था लाला जी, लेकिन वो संत बन गया था। संत कैसे बनते हैं, हमारे पंथ में संत को घर छोड़ने नहीं बनते। वो 60 साल की आयु में था, बच्चों की शादी करके, नाम बचपन से ले लिया था 15 साल की आयु में, बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो गया चौथे आश्रम में, अपना घर में रहता भी था और बाहर भी जाके समय स्थान स्थान पर कबीर साहब के बारे में जानकारी देता था, क्योंकि दादू साहब स्वयं कबीर साहब के शिष्य हुए हैं, उनको भी ऐसे ही मिले थे दादू साहब को जैसे गरीबदास जी को आके मिले थे। तो वो संत जब आया तो गांव वाला ने सोची, भाई संता के द्वारा दी गई फटकार संत तक काट सके। उसके पास जाते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे मारा एक छोरी का छोरा है और उसका बेराना किसी संत ने के फटकार मार दी, वो तो बावड़ा हो गया और वह छोरी रो रो कर लाल आंख कर रही से, अगिया कौन बड़ी मरी गेल, एक तो संतान हुई अरियो की तज होगा भी कोई ना, के जानो में बोली आत्मा उस परमात्मा को। अब लाल की परख तो जोर ही करे, अनजान आदमी तो न्यू ठाक बगा दे पत्थर समझ के। तो वो कहने लगे, अभी लियाओ मेरे पास, कोई ऐसी बात है तो मैं अपनी कोशिश करूंगा। जब उसके पास ले आए गरीबदास को, बैठा दिया, बैठ जा बेटा, बैठ गया। हाँ कौन था वो और किसने पिला दिया तेरे को ये गंदा दूध, महाराज जी बोले ऐसे ना को महाराज जी, वो परमात्मा थे, भगवान आए थे स्वयं, कौन थे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर और दास गरीब उधारी है मुझे सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब का नाम मिला सुनते ही और वो तो लगे रहे बाणी बोलन खातर, ڈٹے کو نہ بندی چھوڑ کبھی غریب داسی. وہ دادو پنتھی 60 سال کا مہاتما اس 10-12 سال کے بچے کے منہ کا نہ دیکھے. نو بولا رب اوڑی دنیا, یہ تو بھگوان بول رہا بھائی, اس میں تم کیا کہتے, یہ باوڑا ہو گیا باوڑے تو تم سو, جو جانتے کوئی نہ اس کے بارے میں. اٹھ کا وہ 60 سال کا مہاتما اور غریب داسی چل پڑتا ہے اس کے پیچھے پیچھے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مہاراج جی یہ وانی لکھوا دو, مہاراج جی یہ وانی لکھا دو, یہ کلیوں کے جیوں کے لیے ادھار کا کارن بنے گی. تیسرے دن وہ مہاتما سے غریب داس بولتے ہیں, کہنے لگے گوپال داس اگر یہ ساری لکھا تو لکھواؤں, کہتے بیچ میں چھوڑ کے باغ جا. اکنا جی ساری لکھ دوں گا. کہنے لگے چال, بڑبیری کا باغ تھا ان کا گاؤں سے 2-4 کلے کی دوری پر جیسے بنی ہوتا تھا, اس میں ایک بہت بڑا جانٹی کا ورکش تھا. پہلے ادھر جانٹی زیادہ ہوتی تھی, اس جانٹی کے پیڑ کے نیچے بڑبیری کے بیر میں باغ میں, اور غریب داس جی بولے ہیں وہ 60 سال کا مہاتما ودوان وہ لکھے, یہ ساری کی ساری وانی لپی بدھ کی گئی. 6 مہینے میں یہ لیکھن کاریہ پورا ہوا. صاحب غریب داس بول رہے ہیں اور وہ دادو پنتھی لکھ رہے ہیں. آج یہ سنتوں نے ہماروں نے اس کو پرنٹ کروایا. اس میں غریب داس مہاراج نے 4 وید, 6 شاستر, 18 اپنشت, 11 اپنشت, 18 پران اور مہابھارت گیتا بھاگوت رامائن ایسے ڈنگ تن چترت کر رکھی ہے کہ تلسی داس کی رامائن بھی پھکی لگ جاوے. ایسے ڈنگ سے, ایسے مارمک ڈنگ سے انہوں نے لیکن تھوڑے ہی شبدوں میں پورن ورنن دے دیا. اور ساتھ میں اس پورن پرماتما ست پرش ستلوک کی پراپتی کا بھی جانکاری اس میں پورن ڈنگ تن دی. یہ کیوں لکھی انہوں نے کہ کوئی نہ سوچے کہ غریب داس مہاراج نے ان شاستروں کا گیان کوئی نہ تھا. پنتانجلی کا یوگ شاستر اس انپڑھ مہاتما نے, غریب داس مہاراج نے, بھگوان نے ایسے ڈنگ تے لکھ رکھا کہ یوگی سر مارتے ہیں کیونکہ وہ سوئم ایشور تھے, ان شریر کے انگ انگ چھان کے اس میں لکھ رکھے. ایک 104 سال کے مہاتما یوگی رامانند جی مہاراج جی اور بہت تگڑے شاستروں کے جاننے والے, ان کے ساتھ یوگ مارک کو ایسے ڈنگ سے چترت کر دیا کہ وہ 104 سال کا مہاتما اور کبیر صاحب کے 5 سال کے بچے کے پایام پڑ گیا, کبیر صاحب کے. اب کبیر صاحب اور غریب داس جی یہ 2 دن آپ کو یہ نام سننے کو ملیں گے, اور ساتھ میں ایک پاتر ہوگا جوت نرنجن جو آپ کے لیے قطعی نیا ہوگا. یہ تینوں اکثر آپ کے لیے نئے ہوں گے, اور باقی ہمارے 3 پاتر اور ہوں گے برما وشنو مہیش, یہ آپ کے سنے سنائے ہوں گے. ان کی مہیما بھی آپ کو جو کی تو بتائی جائے گی جو کہ آج تک ہم شاستروں میں پڑھتے اور سنتے آئے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان شاستروں کا نشکرش نکالا اور یہ بھید دیا کہ یہ 3 لوگ کے بھگوان سے بھائی برما وشنو مہیش, یہی شاستر بتا رہے ہیں. لیکن 3 لوگ کی کیا سادھنا ہے اور کس ودھی سے شریشٹھ سادھنا ان کی آپ کر سکتے ہو, جو انے آپ سادھنا کرتے وہ مکتی کی نہیں ہے. نہ شیو لوک پراپت کر سکتے, نہ وشنو لوک پراپت کر سکتے, اور نہ ہی آپ آتم کلیان کرا سکتے. ان بھگوانوں کی سادھنا بھی آپ غلط کرتے ہو. آپ کیا کرتے ہو, جیسے ابھی بتایا تھا کہ تیرتھ پر جاتے ہو, مندر میں مورتی بنا کے اس پر پانی ڈال دیتے ہو, وہاں بھگوان نہیں سے بھائی, یہ دھوکہ تمہارے ساتھ انجان پنے میں کیا ہوا سے. کسی پوروج تمہارے انپڑھ ہوتے تھے, کسی انجان سے وہ پوچھ رہے تھے گیانی ودوان سے کہ بھگوان کیسا ہوتا ہے مہاراج. ایک بار پوچھا, 2 بار پوچھا, اس نے سوچا یہ تو کان کھا لیں گے. اس ودوان نے کیکرا کہ بھگوان وشنو کا سادھک تھا تو وشنو جی کی مورتی بنا کے جیسا بھی وہ اپنے درشن کرتا تھا اس کے اپنے نام سادھنا سے وہ آکرتی مٹی کی بنا دی اور پھر وہ رکھ دی کہ بھائی ایسا ہے وہ میرا بھگوان. یہ بھگوان وشنو کے 4 بجا بنا دی, آتما شنکھ گدا چکر دے دیے, اور یو سب اس نے ماتھا ٹیک, میں اس کی آدر کرتا ہوں. آدر کے لیے سوئم ماتھا ٹیکتے تھے وہ سنت, اور ان کو بھی بتا دیا کہ بھگوان ایسا ہو سبائی. اور پھر اس کی پوجا شروع ہوگی, پھر وہ پتھر کی بن گئی. اس پتھر کی مورتی پہ پانی چڑھن لگ گیا, پتا سے چڑھن لگ گیا, اس کو بوگ لان لگ گیا. عرض کہ یہ تو ان کو اس لیے بتایا تھا پرماتما ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کو پانی کی ودھی یہ نہیں ہے کہ اس مندر میں پانی ڈالنے جاؤ. جیسے بچہ سکول میں پڑھتا ہے اس کو دکھاتے ہیں آ کا آم, آ کا آم, अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल के बैठ जावे, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो नो कह बेटा इसमें आम कोना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नि ये आम है, मारे गुरु जी बता करते हो आका आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को भले पुरुष, ये किसने बहका दिया। आम तो मंडी में मिला है और जेब में 20 रुपये हो, और जब मिले इस कैदे में आम नहीं है, इसी प्रकार पत्थर में परमात्मा, उस मंदिर में भगवान नहीं है, वहां उसका चित्र है, उसने 100 बार देख सकते हो और 1,00,000 बार देख सकते हो, आदर भी कर सकते हो, पर आत्म कल्याण को ना। जिस प्रकार आम खाने के लिए जेब में पैसे हो और मंडी में जाकर आम नाम से पुकारे आपको पैसे के बदले में वो आम मिले, इसी प्रकार संतों के पास जाओ, अपने नाम ने दे और नाम की तुम कमाई करो, और उस धन के बदले में वो परमात्मा के जो गुण तुम गाया करते थे सुना करते थे वो आपको आभास हो, और फिर वो परमात्मा के गुण आपके सामने खड़े हो जाए, आपने सुख मिले। क्या बात ही सुन में ना आंती ले बताए, मूर्ति की पूजा का खंडन कर दे, खंडन क्या किया, ये तो यथार्थ बता दी कि इसमें ऐसे है, किसी भी नाज तक मूर्ति पूजा करके भगवान पाया हो नहीं। कोई कहते हैं कि फलाने ने पत्थर में को दूध पिला दिया था, उसने अपनी कमाई भक्ति से पिला दिया था, तुम प्या के दिखाओ, उस नाम की कमाई से उस मालिक ने आप इसमें प्रकट कर सकते हो, इसमें प्रकट कर सकते हो, जैसे प्रहलाद ने लाल खंभे में प्रकट कर लिया। क्या वह पूजा करने जाता था, क्या मंदिर में पानी डालता था, पर अमंदे हुए बैठे से वह अणजान साधना न जल्दी कर ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, एक मांज दो का पीतल का थाली ले ली और उसके ऊपर लोटा धर लिया पानी का जल भर के, अन्य कहते हैं जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। आध्यात्मिक मार्ग में फेल हो जाओगे तुम और गधे की जूनी में जाओगे, लग 84 हो गए। कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, और जड़ मूर्त किस काम की, मत रहियो भरोसा है। अब बताओ इसमें खंडन क्या कर दिया, सच्चाई है तो ढूंढो भगवान उसमें है, या हम बताएं आप नाम लो आपको भगवान दिखाएं, कहीं तो ठिकाना हो। तो इसलिए भाई सच्चाई सच्चाई रहती है। तो इस प्रकार की जानकारी गरीबदास जी महाराज ने इसमें दी है, और ये भगवानों की भी साधना करनी है, इनकी भी हम तो ठीक नहीं कर रहे। आप जाते हो कहां पर, कावड़ लेने के ताई, एक गांव में हमने स्कूल में सत्संग कर दिया और कावड़ के बारे में जैसे अभी बताऊंगा ऐसे बता दिया, जो बुद्धिजीवी थे वो तो समझ गए इस पॉइंट को बिल्कुल ज्यों की त्यों है, और एक 20-30 कावड़ियां का सरदार था वो सर हो गया आके नो बोला जी आपने नो किसा कह दिया भाई कावड़ लाने का कोई फायदा नहीं, फायदा तो कोई और चीज है, उसका पाप भी बताया मैंने कितना हो गया आपको, ये सोचा आपने कभी कैसे। अब देखो क्यों लाते हो कावड़, कि हम जी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण खातिर भाई कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर जाते हो अकान जी, फिर कहां जैसे आप गई वहां तक, यहां से लेकर वहां तक सावन के महीने में बिना गणती के जीव हो जाते हैं, और जितने जीव तुम आते वहां तक मार रहे हो बेटा वो भी आपके खाते में लिखे गए, वो खाली कोई ना थे। और क्या लाए पाइया गंगा जल, दो एक दो किलो ले आए हो गए आगे पाछे लटका के, ये भगवान शिव के लोक तक गंगा आती है, और वो भगवान शिव जी पाइया गंगा जल का प्यासा कोई ना, वो भी कभी नहीं प्रसन्न इन कामों से जो तुम कर रहे हो, ये गलत साधना आपकी। बोला नू क्यों करे, अभी बताता हूं। 1991 में एक बार ऐसे ही सावन के महीने में बहुत तगड़ा वहां पर जमघट तो हो जाता है, जो अच्छे साधक थे भगवान शिव के कति अटूट श्रद्धा के लोग वो कहां जाते, नीलकंठ के दर्शन ताई, जो कि हरिद्वार से भी आगे बताते हैं काफी ऊंचे पर, को 30-40 किलोमीटर आगे चल के और काफी पहाड़ की ऊंचाई पर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम से एक मंदिर बना रखा है, और वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, उसके आगे काफी लंबा चौड़ा चबूतरा परिसर सा बना हुआ आंगन सा है। तो उसमें पेपर में आई थी सारी विस्तृत जानकारी, और उस समय हम 1988 से मैंने ये बंदी छोड़ का मार्ग ले लिया था, पहले हम भी यही साधना करते थे। उस पेपर ने सुनकर आंखें तासु बंद नहीं हुई हमारे, दुनिया तो सिर्फ नो सोचती होगी भाई बड़ी माड़ी बनी, लेकिन हमने पता चला कि वो अनजान साधक थे। क्या हुआ कि सारी रात वो भगवान की शिव की साधना करते रहे, उनकी आरती गाते रहे, और ठीक सवेरे 3-4 बजे सी क्या कहते हैं कि वो मंदिर नीलकंठ ही गिर गया, वो पहाड़ टूट गया। क्यों, क्या हुआ कि उस पहाड़ के ऊपर स्थित था, उस पहाड़ के साथ में पानी झरने का बह कर निकलता रहा, किसी ने पता चला को नहीं, नीचे से उसने कति खोखला कर दिया और वो कुछ ऐसा झटका सा लगा कि वो पहाड़ भी और नीलकंठ का मंदिर भी कहते हैं वहां गिर गया, टूट गया। वो सारे शिव के साधक कहते हैं कम से कम 1500-1600 आदमी तो उड़े मर गए उसी पर, इतना बुरा हाल कैर हुआ था, उसमें देखा भी नहीं जाता, अखबार देखने में भी दिल नहीं करा था, इतना काल जा कांपे था। बाकी जो बचे खुचे वो वहां से भाग लिए, भाग लिए तो उपरेत गिर लिए, नो कहने सीधे तले न सरक गए कि पहाड़ भी कहें गिर टूट गया, कदे उरे ना खिसक्या हुआ, तो नीचे ने लक्ष्मण झूला ये पुल बने हुए हैं इनकी तरफ न थलस गए, कुछ उरले पुड़का नहीं कुछ दूसरे, क्यों रास्ते वहीं थे दो। तो इधर के लोग में भगदड़ मच गई कि जल्दी से पार हो जावा, कहीं ये पहाड़ उरे ना खिसका हुआ। जो भाग रहे थे उन्हें देखकर और भाग लिए, क्यों भाग लिए कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया भाई, कति गणानाथ हो नाश हो गया, अनर्थ हो गया, वहां तो बहुत दुनिया मर गई, भाग लिए जी। उधर से लोग सुबह सुबह 6-7 बजे नोन तक निकल लाग रहे, 6 बजे से तो वो पुल पे इधर से भागने वालों की भगदड़, नोन से आने वालों की जनसंख्या, वो समूह बीच में जा कट गया। इधर वाले से पूछे रहे के हो गया क्यों भाग रहे, सो वो कहते हैं पहाड़ टूट गया, पिछले बताता है, अगला सुना रहे के हो गया पहाड़ टूट गया, अगले ने सुन गया कि वो पुल टूट गया। भाई जब इतनी भगदड़ यहां मच रही है तो इस सब कोई गड़बड़ हो रही है, तो आगे नोन वाला ने सुन गया कि पुल टूट गया, वो इधर भादन की सोचे कि तुम बीच में आगे ना नोन जान दोगे ना इधर जाने दोगे, और वो इधर भाग रहे हैं बीच में फंस गए, और इतना जोर लगा रहे हैं कोई इधर कोई इधर। कहते हैं उसमें लिखा था सैकड़ों व्यक्ति बूढ़े और बालक तक नीचे कुचल दिए, 100 आदमी तक नीचे दबकर मर गए, उठाए उठे नहीं गए अंदर। बाकी जब वो कति जाम लाग गया तो बीच में सुनने वालों ने सुन दिया कि पुल टूट गया। कहते हैं सैकड़ों आदमी गंगा में डांक मार गए कि ये नो का नो पड़ेगा और हम तोड़े मरेंगे बीच में दबकर, कि मैं हो सकता आत्मा मार के बची जाऊं। ये पूर्ण विस्तृत जानकारी उस पेपर में आई थी। अब भगवान गरीबदास महाराज की वो बात मेरा रह रह के याद आवे है कि गलत साधना से भगवान शिव जी विराजी को ना, अमरनाथ की यात्रा पर गई थी वो श्रद्धालु आत्माएं जो भगवान शिव के दर्शन खातिर गई थी, और वहां पर के कहर हुआ था बर्फ में दबकर मर गए सैकड़ों हजारों व्यक्ति। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता, तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से, ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलियुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरो पारा, वो भी छोड़ दिया, मेरे जैसे नणजान ने किम राह बता दिया, उसको पाछे बाज लिए। फिर देखा देखी कहां जाते हो कि कावड़ लाऊंगा मैं भी लाऊंगा, फिर उसने नौकर दो जोड़ा करते हैं और डरा दिया, जोड़ा ना करा जब मर गया, क्यों एक कब्र में हार ले से इंसान वाण जान में। फिर नौका भाई चार लाओ जब गणा फायदा, अगला गेड़े बेरोना कितने जाएंगे, तो महाराज जी कह बैठ के बदन तक कराना जाता और ये कोड़ी खुबात में घाटा जोड़े बैठे थे, उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लाना। तो वो 20-30 आदमी और बैठे थे वहां पर, फिर उन्होंने कहा भाई देखो सोचने जोगी बातें हैं, वो अपने अनाड़ीपने से तो इसको स्वीकार करो या अस्वीकार करो, वो तुम्हारी अपनी मौज से, पर किसी शास्त्र में दिखा दो इस साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे, और गीता जी में भगवान कहे कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है, ये तुम्हें लक्ष्य चौरासी में ले जाती है। बताओ ना तुम गीता जी को स्वीकार करते और गीता जी की महिमा गाओ देश तंगणी, तो निरी महिमा तो बात नहीं, उसका अनुसरण आपने करना पड़ेगा। तो इसलिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास महाराज ने ये जानकारी देने के लिए ये इतने बड़े ग्रंथ साहब की रचना करनी पड़ी, कति अनपढ़ और इसमें विद्वान फेल हो जाते हैं उनकी वाणी के सामने, सभी शास्त्रों का ऐसा निचोड़ काट दिया, उनको कति सुचारू कर दिया जैसे विष्णु पुराण में लिख रखा कि विष्णु जी सृष्टि के बनाने वाले हैं, रचना करने वाले, और इन्होंने शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये शिव पुराण मेरे पास रखा, किसी ने पढ़नी हो तो विष्णु पुराण पढ़ लेना। और फिर विष्णु और कहते हैं ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु ने की अपने सहयोग वास्ते। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु शिव जी जो है सब देवनपति देव है और सारी सृष्टि का रचने वाला यही है, और ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। ब्रह्मा पुराण में लिखा कि ये प्रजा पिता है और शिव और ब्रह्मा विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। शक्ति पुराण में लिखा है कि ये जगत जननी है, ये जगदम्बा है, ये तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है और यही सारी सृष्टि की रचने वाली है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई जब शास्त्र तो है सारे और उनका लेखक भी एक ही है, व्यास जी ही गीता जी का लेखक, व्यास जी ही 18 पुराणों का लेखक और सुख सागर आदि का ये व्यास जी ही लेखक है। अब गरीबदास महाराज ने सारे शास्त्रों को एक ऐसे मोड़ पर जाकर धर दिया, एक ऐसी कहानी हम आपको कल सुनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे शास्त्र अपने आप सुलझ जाते हैं, ना ब्रह्मा बड़ा रहे ना विष्णु छोटा रहे ना शिव में कोई कमी पावे। उसकी एक ऐसी विधि भी तो उन्होंने बताई है, जब हमने उस मूल का बेरा पटेगा जब पता चलेगा ये कौन शक्ति है और कहां से उत्पत्ति हुई और के इनके काम है और कैसे ये हमें लाभ देते हैं, तो वो सृष्टि रचना हम आपको कल सुनाएंगे। सबसे पहले कल सृष्टि रचना शुरू होगी और उसमें पूरा विवरण दिया जाएगा। आज आपको सत्संग के माध्यम से और आदि पुराण गरीबदास महाराज जी का शुरू कर रहे हैं, इसमें रामायण भी, महाभारत भी और शिव पुराण भी, बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। अभी 10-15 मिनट के बाद आज रेस्ट करेंगे, पहले सुनिए। आदि पुराण ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन, शुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन, ओंकार अपार समूलम नाद बिंद बिन है अस्थूलम, सतपुरुष को सिरजी माया शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने माया बनाई, सतपुरुष ने या शेरां वाली माता की उत्पत्ति की। सतपुरुष को सिरजी माया शब्द स्वरूपे रूप बनाया, इस माई का शब्द से रचना की सतपुरुष ने। ये तो मोटी मोटी सी बता रहा हूं आपको। संख लोचनी संख ज्ञाना आद अनादि पुरुष का ध्याना, मन से सिरजी मनसा नारी उपजी माया आद कुमारी, अबला सुंदरी नार नरेसा भंग लेगनाद नहीं परवेशा, परानंदनी मूला माया दारुण देवी सिरजी राया। मूल उचार होत तिस माही सर्वकला समरथ पद जाई साई, पिंगुल बैन नैन पद नेहा सुनियो पिता सतपुरुष विदेहा, कौन काज की नी मोहे अंगा कहो पिता मोहे निज पर संगा। ये माया जब सतपुरुष ने बनाई, इसने पूछा कि हे पिताजी अब मुझे बताओ आगे क्या काम है और किसके साथ किसके पास मैंने जाना है। कौन काज की न्या मोहे अंगा, किस लिए मुझे बनाया, मेरा शरीर आपने किस लिए बनाया पिताजी, कहो पिता मोहे निज पर संगा, कहा पुरुष जद वचन बिचारी कीर्ति लोक रचो संसारी, बोले पुत्री अति अधीना कौन पुरुष हमरे संग दीन्या। के कहते हैं कि किस पुरुष के साथ मुझे भेज रहे हो ताकि मैं सृष्टि का की उत्पत्ति करूं, रजगुण छतगुण तमगुण संगी अक्षण मैं रचा तब सब जग त्रिभंगी। के कबीर साहब ने ये तीन गुण और पांचों तत्व तीन गुण इस माई को दे दिए, रजगुण सतगुण और तमोगुण। ग्रीब तर्भंगी तीनों कला ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण तमोगुण ये घट घट में परवेशो। सतगुण विष्णु जी हैं रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शिव है। कहते हैं इस माया ने इन तीनों की उत्पत्ति की। कैसे की? पुत्री मस्तक शीश न माया, अंजन मंजन लेप चढ़ाया, रैसी माया बदन विनोदम, ज्ञान ध्यान उपजे परमोदम, बटक बीज पिंडल विस्तारा, इंद्री पांच पचीसों लारा, मन गुण कर्म मा शान सब दीन्या, रज गुण सतगुण तमो गुण बीन्या, कमल नैन कमला पति रानी, चौदह भवन भरे जल पानी, कलप करी जद मूला माया, ता पानी में अंड उपाया, जलमिल करण कमल पर संगा, कमल माही जलमिल किरण कमल पर काश्या, कमल माही ब्रह्मा का बासा, ओंकार बीज उत्पाती, उपजे ब्रह्मा सत के नाती, दंड कमंडल ब्रह्मा लाए, योग छतीस कमल भरमाए, जुग छतीस धरे जा ध्याना, भंवर गूंज में भया दीवाना, तप तप ब्रह्मा वचन सुनाया, ब्रह्म रोह शिक्षा पद पाया, किलियम मूल मंत्र मन माला, ओम शब्द रचे चित्रशाला, कच्छ मच्छ कूर्म और शेषा, धौल धरणी की न्या परवेशा, चंद्र सूर तारायण तेजम, लोक दीप फुलवाड़ी सेजम। के उस माया ने किस प्रकार ये लोक आदि बनाए अब विस्तृत जानकारी देंगे, ये तो वाणी सुना रहा हूं आपको। सृजे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार की या परवेशा, शेष नाल जद ब्रह्मा आए, मंत्र भेद दिया गौराए, ग्रीव मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तारे, अंत कोट ब्रह्मंड है, रचे जो सर्जन हारे, लख चौरासी रूप लखाया, ऐसा ध्यान धरा मन माया, किन्नर भूत पिशा तिर दाने, स्वर नर मुनिगण गंधर्व जाने, इंद्र कुबेर वरुण धर्म राया, एक शब्द में सकल उपाया, शेषा नारायण पद परसे, अचराचर हृदय में दर्शे, अष्टकुली पर्वत पाषाणम, अष्ट पदवी नाग बखाना, नौ सै नदी नवासी नाला, ठारा भार रचे बनमाला, तीन कोट तीर्थ गय नारा, सुन सागर का वार न पारा, स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाए प्रथम स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाया, प्रथम पूज गणेश्वर राया, माता कह सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अवधूता, त्रिगुण रूप धरा जद माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया, मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी, मैं हूं माया आदि कुमारी, तीनों पुत्र कहते हैं बाता, कौन पुरुष है तुमरा माता, रहणी गहणी जाकी बतलाओ, सुन माता हमें पिता लखाओ, बोले माया आदि कुमारी, हमरा वचन सुनो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी तीन लोक के मालिक, पृथ्वी ऊपर धरे न देही, गगन मंडल में वो पुरुष विदेही, माता आदि ज्ञान गौर आवे, पिता तुम्हारी दृष्टि नहीं आवे, गृह पिता पुरुष परमाते, मां निर्वाणी नीतंते, पुरुष विदेही आदे है, नाम गाम नहीं पंथे, मैं अष्टंगी हूं सत्य स्वरूपा, अंत कोट गुण ज्ञान अनूपा। माई कहती है कि मैं अष्टभुजा की अष्टंगी हूं और अंत कोटों के ब्रह्मांड का अनंत कोट गुण ज्ञान अनुपा, यानी मेरे जो शक्ति है, मेरे अंदर जो गुण है वो सबसे ज्यादा है। ओम आद बीज फल मोरा, सावित्री लक्ष्मी भई गौरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरिया, पुत्री पुरुष किए नर हरिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथा, माता ही का राख्या नाता, जाकू देख जगत सब भूला, एक अग्नि एक कै चूल्हा, अंधकार गुण किया परेरी, सोई माता सोई चेरी, सतपुरुष निर्गुण निर्वाणी, संघ कल्प युग योग ध्यान, सतपुरुष निर्गुण निर्वाणा, संघ कल्प युग योग मध्याना, संघ कल्प युग गए बिहाई, ब्रह्मा समाधि अखंड लगाई। ग्रीव सूक्ष्म साक्षी भूते है, जाका ये विस्तारे, बटक बीज की मांड में साहेब पुरुष हमारे, मन माया से नोतत होई, अपना बोया लुणे सब कोई, इंद्री पांच तीन गुण तीरा, अष्टंगी का बिना शरीरा, नोतत का सब नाच नचावे, ब्रह्म बीज ब्रह्म बीज मिलन ना पावे, साक्षी भूत संगीत सयाना, डोरी हंस बंध्या गल प्राणा। जीव जन्म झां से जीव जन्म झां ले अवतारा, साक्षी भूत होवे ना न्यारा, अकल अजन्मा दृष्ट न मुष्टि ही, जाका रूप लखाऊं गुस्ती। जाके चरण से स्नित सेवे, मांड मंडी को पल में खेवे, अवगत बंका रूप मुरारी ही, ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। शिव जाकू प्रणाम परेख है, साक्षी भूत और ना देखे, चौदह कोट भवन के माई, साक्षी रूप रहत है ठाई। अब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बताऊंगा कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिसका ये स्वयं ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव आप देखते हो साधना कर रहे हैं। किसकी साधना करते हैं? हम सुना करते थे कि भगवान विष्णु की साधना करते हैं। ये तो तीनों इक्विवेलेंट पावर है, इसकी साधना क्या करेंगे? तीन लोग के भगवान, तीनों की एक सी शक्ति, एक महक में का फर्क है। जैसे तीन मंत्री होते हैं, एक को होम मिनिस्टर बना दिया उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी पूजा ज्यादा हो जाएगी। बाकी मंत्री वो भी हैं, उनका डिपार्टमेंट ठीक हो ना, इसलिए उनकी पूजा घट। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और ये निरंजन के मंत्री हैं। इन तीनों को एक ही ड्यूटी दे रखी है, एक तो शरीर बनावे, एक पालन पोषण करे और एक हमें संहार कर दे। जो पालन पोषण करे, हमारी सुख सुविधा दे, वो हमने ज्यादा प्यारा, उसकी महिमा आप पवड़गी। इसलिए महाराज कहते हैं इनमें फर्क हो ना तीनवा में, सिर्फ मैक में अंतर। इसलिए ब्रह्मन कौन पूजे है? विष्णु पूजा भाई, हमारी रोटी रोजी का सारा प्रबंध इससे के हाथ में है। तो इसलिए शिवजी को भी पूजते हैं क्योंकि डर ला गई मार ना दे। और साथ में यह है कि इनके पास ऋदिश्य दिया है, ये माया दे सकते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव की साधना करी और सर काट कर चढ़ा दिए, लंका मांगी सोने की लंका दे दी, पर वह दुर्गति ना मिटती। वो दुर्गति मिटाने का मंत्र को न्यारा से, जिसमें माया भी मिले पर विधिवत और सद्बुद्धि के साथ, और फिर सदुपयोग की जाओगा, वो उसने दुरुपयोग किया उस माया का। माया कोई धन नहीं है, अकेला धन माया नहीं होती, ज्यादा बच्चों का हो जाना भी माया होती है, ये शरीर भी माया है, राज भी माया है, और ये सब कुछ माया ही माया है। इस प्रकार महाराज ने जब इस बात का हमें सारा भेद दिया, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोक के भगवान हैं, इन तीनों के कर्तव्य भी बता दिए। और इसमें ये बता रहे हैं कि जाकू शिव जाकू प्रणाम परेख, भगवान शिव भी जिसको नमस्कार करता है, और साक्षी भूत रहे नहीं देखे, चौदह कोट भवन के माही, साक्षी भूत रहे सब ठाई। अवगत बंका रूप मुरारी और ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी, यानी उनसे ऊपर की एक शक्ति है। जैसे डीसी के सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जावे तो वो डीसी उस मुख्यमंत्री की अटैची पकड़ता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते डीसी में कोई पावर को ना, लेकिन उस मुख्यमंत्री का वो बहुत छोटी शक्ति हो गया। और प्रधानमंत्री आ जावे तो मुख्यमंत्री वो डीसी वाला काम करे। इसी प्रकार ये तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का मालिक है ज्योत निरंजन, जिसको वेदों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है। इससे ऊपर एक पारब्रह्म शक्ति है जो सात शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील पद्म शंख, सात शंख ब्रह्मांड का मालिक वो परब्रह्म है, और असंख ब्रह्मांड का मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। रोज सुना करते कि ब्रह्म कभी पारब्रह्म और कभी पूर्ण ब्रह्म, हम आर के क्या करते, ये विष्णु जी ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म और ये पार ब्रह्म। नहीं, महाराज गरीबदास जी कहते ऐसा नहीं, तुम्हारे सुनन में समझन में फर्क है। डीसी कहो एक तरफ से तो, और डीसी ने नो को यू है मुख्यमंत्री और फिर को यही प्रधानमंत्री, भाई फिर तुमने ज्ञान को नहीं, या तो डीसी कहो इसको या फिर इसने प्रधानमंत्री कह लो, हम जब भी मान लिया तुम एक वाणी तो बोलो। अब तीन लोक के भगवान कहो और फिर नौके सर्वलोकों के यही भगवानों को करो भाई, सर्व लोकों का और परमात्मा, जिसमें गीता जी में स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का जहां अंदर जिससे सारी सृष्टि और सब जीव उत्पन्न हुए, और उसकी साधना स्वाभाविक मंत्र जाप करके और आप उस लोक में चले जाओगे, फिर मरण को ना हो उस लोक में उस परमात्मा का, और फिर आप उस परम धाम को प्राप्त होगे, उस सतलोक को प्राप्त होगे। तो इसी प्रकार यहां बंदी छोड़ने का रखा है कि उस परम पिता परमात्मा सत्पुरुष जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान से जो पूर्ण ब्रह्म है और पर ब्रह्म भी है और ये ब्रह्म भी है, ब्रह्म से ये सारी उत्पत्ति हुई, निरंजन से ये सब जो कुछ भी बना हुआ मिट्टी और पृथ्वी है जीव ये सारे ब्रह्म से बना, इस ब्रह्म ने बनाए ज्योत निरंजन ने। क्यों बनाए? इसने 1,00,000 प्राणी रोज खाने पड़ते हैं मनुष्य, 1,00,000 जीव ये रोज खाता है। कैसे खाता है? इस शरीर को नहीं खाता, ये तो खोखा है ऊपर का, इसके माध्यम से दुष्कर्म करवाता है, जितने ना कर सके ये प्राणी उतने करवा दे से, और फिर इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर के ऊपर इसका लेप जमाता है, और उस वासना को फिर तपस्या के ऊपर भून कर इस जीव ने इतना गर्म कर दे बेसोधी हो जाता है, और वहां ये मैल छोड़ता है उस सूक्ष्म शरीर के अंदर से, और फिर वहां से अपनी सिद्धि से उड़ा देता है, ये ब्रह्मंडों में से घूमता हुआ वापस आता है ये ठंडे वातावरण में आकर फिर सोधी में आ जाता है। पर इसने नो ना बेरा तू कहां गया था, न इसे ये मालूम रहता कि तू पिछले दिन में के था, धर्मराज के पास जाता है। इस निरंजन ने एक धर्मराज और बिठा रखा अपना न्यायकारी कि जैसे कर्म प्राणी करे इनको फल देता रहे, वो लेखा जोखा गरीबदास जी के वो न्यारा रह गया, फिर अपने कर्म अनुसार ये कभी पशु बने कभी गधा बने और कभी मनुष्य शरीर में जा। तो शरीर जीव मरता नहीं, ये अमर है, लेकिन ये मरण तो भी गुंडा, कदे गधा बन गया कभी कुत्ता बना कभी कुतिया की जुनी होगी, कभी टांग कट गया कभी कैंसर होगी, ये मनुष्य शरीर में कौन सुखी? किसी का एक लड़का था वो मर गया, किसी का जवान लड़की का पति मर गया, और 24 घंटे बूचड़ खाने में यह प्राणी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। तो यहां ये बताना चाहते हैं बंदी छोड़ के ये निरंजन जो स्वरूपी निरंजन ये आपको धोखा दिए बैठे हैं, और साथ में इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धोखा दे रखा है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान गुप्त कर दिया और इन गलत शास्त्रों का प्रचार यानी अपने तक सीमित शास्त्र ही यहां पर प्रचारित करवा दिए। तो इस बारे में कल आपको सबसे पहले हम ये सुनाएंगे, आज सत्संग फिर होगा, आज थोड़े से हम लेट हो गए थे इसलिए क्षमा चाहते हैं। बंद कर दो। जैसा कि अभी प्रकरण चल रहा था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान सत्पुरुष हैं, उनके बारे में गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखा और अपनी आत्मानुभूति के आधार पर ये सारे ग्रंथ साहिब की रचना की है। वही वाणी में आपको सुना रहा था ग्रीव गगन मंडल में पुरुष है दृष्टमुष्ट से न्यार कोट ज्ञान से भिन्न है पंडित करो विचार सेत वर्ण सब साहेब सुब रंगा जा में उठे अनंत तरंगा 5 तत्व के मैं 9 तत्व का भेद लखावत हूं सब गत का 9 तत्व के मैं 12 देवा इंगला पिंगला मध्य परेवा 12 मध्य गोष्ठ समाना गुष्ट माही राई परवाना मृत्यु लोक मूर्ति मैं मनता हरदम खेल फाग बसंता मात पिता ना जननी जाया सो अनुभूत पुरुष हम पाया। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं वो सत्पुरुष वो परमात्मा जिसका सफेद ही रंग है और सफेद ही वहां का श्वेत सतलोक है, वो परमात्मा हमें प्राप्त हुआ गुरुदेव की कृपा से। गरीब अकल भी हंगम रूपे है साहेब समर्थ आप पिंड ब्रह्मंड में रम रहा जाका जप ले जाप जैसे गुड़ी उड़े सुन माही, खेल खिलारी डोर बंधाई। आसमानी उद्गार उड़ावे, मंदा चल से नीचा आवे। के सूरत का अभ्यास बताते हैं कि जिस प्रकार पतंग उड़ाया जाता है और पतंग ऊपर चला जाता है किस आधार पर, एक डोरी से, इस प्रकार वो डोरी उसको उड़ा भी रही है और विधिवत चला भी रही है। अगर वो डोरी ना रहे तो वो पतंग ना जाने कित का कित जाग रहे हैं। इसी प्रकार बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि गुरु से उपदेश लेकर उस नाम से जुड़ा हुआ अभ्यासी अभ्यास करता है तो अपने यथास्थान पर उस नाम की डोरी के अनुसार इसकी वो समाधि यथास्थान पर चली जाएगी। नाम की महिमा बंदी छोड़ बताते हैं कि पृथ्वीला प्रतिक्षणा देवा तो इस मन का लख है न भेवा, सर्वाधिक में बैठे जाई 14 भवन पलक फिर आई। सो तो मन के आत बेकाना बोर बहे हैं शुक्र सवाना। जो लोग मनमुखी साधना करते हैं उनके बारे में बंदी छोड़ महाराज कहें, कोई तो तपस्या कर लेता है, कोई अन्य साधना करता है, ये सब मन ने इनको भ्रमित कर रखा है। कभी स्वर्ग में चले जाते हैं जैसे सुखदेव जैसे योगी अपनी साधना करके और स्वर्ग चले जाते थे और स्वर्ग से फिर वापस आ जाते थे।